वो लड़का अभिमन्यु और इप्सिता के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कुंवर सा, आप अपनी ही पार्टी से इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? अभी तो हमारी आपकी मुलाकात भी नहीं हुई, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर तो रुकिए, आपके साथ तो पहली बार हम इतनी सुंदर स्त्री को देख रहे हैं, हमसे मिलवाएंगे नहीं इन्हें? अभिमन्यु ने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, ओह पृथ्वी, मीट माई फियांसे इप्सिता सूर्यवंशी, और इप्सिता ये पृथ्वी हैं। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई, मेरे होने वाले पति। जैसे ही अभिमन्यु और इप्सिता ने ये बात सुनी, वे पीछे मुड़कर देखने लगे। अवंतिका पृथ्वी के बगल में आकर खड़ी हुई, उसने पृथ्वी की बाह को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। इप्सिता अवंतिका को फिर से अपने सामने आते देखकर उसे घूरने लगी। पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए अवंतिका की ओर देखकर कहा, कहाँ चली गई थी तुम, हम तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहे थे। अवंतिका ने पृथ्वी के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, अव बेबी, थोड़ी देर के लिए भी वेट नहीं कर पाए क्या मेरा, बस वॉशरूम ही गई थी। अभिमन्यु अवंतिका और पृथ्वी को इस तरह बात करते देखकर बोला, पृथ्वी, हम अभी थोड़ी जल्दी में हैं, हम आपसे बाद में मिलते हैं, नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लेकर पार्टी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, उनकी कार वहीं गेट पर मौजूद थी। इप्सिता और अभिमन्यु कार में बैठे और कार सीधे विला की ओर मुड़ गई। पूरे रास्ते दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस समय उन दोनों के लिए ये पल काफी असहज हो गया था। ना तो इप्सिता अभिमन्यु से कुछ बोलना चाहती थी और ना ही अभिमन्यु इप्सिता से कुछ कहना चाहता था, क्योंकि अभिमन्यु को नहीं पता था कि अगर उसने इप्सिता से अभी कुछ कहा तो वो कैसे प्रतिक्रिया करेगी, इसलिए वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। इप्सिता के मन में अभी भी अभिमन्यु का वो जोशीला चुंबन बार बार घूम रहा था। इप्सिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस तरह से अभिमन्यु से नजरें मिलाए। उसने अपने मन में कहा, हम दोनों मंगेतर हैं और एक दूसरे के साथ सगाई कर चुके हैं, तो क्या इस रिश्ते में एक दूसरे को चूमना सही है? क्या हमारा चुंबन गलत नहीं है? इप्सिता के दिमाग में बार बार चुंबन को लेकर अलग अलग तरह के सवाल आ रहे थे। उसने धीरे से अपनी नज़र अभिमन्यु की ओर घुमाई। उसने देखा अभिमन्यु भी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था, जिसे देखकर इप्सिता समझ गई कि शायद अभिमन्यु भी उतना ही असहज था जितना कि वो। थोड़ी ही देर में कार विला के सामने आकर रुकी। इप्सिता ने जैसे ही कार को रुकते देखा, वो तुरंत कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और तेज कदमों से अंदर की ओर आई। इप्सिता को इस तरह अंदर जाते देखकर अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा, इप्सिता, एक मिनट रुकिए, हमारी बात सुनिए। अभिमन्यु इप्सिता को रोक रहा था, तब तक इप्सिता सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी और वो सीधे अपने कमरे में चली गई। इप्सिता को इस तरह भागते देखकर अभिमन्यु को भी उससे और कोई बात करने का मौका नहीं मिला, वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अभिमन्यु जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम एक काम करते हैं, पहले अपने कपड़े बदल लेते हैं, उसके बाद इप्सिता से जाकर माफी मांग देंगे, शायद उन्हें इस तरह से हमारा उन्हें चूमना अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा शर्मिंदा हो रही हैं। हमें भी उन्हें चूमते समय थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने उन्हें इस तरह से क्यों चूमा। इप्सिता ने तो चलो हमें इसलिए चूमा क्योंकि वो अवंतिका को ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि हम दोनों मंगेतर हैं। जब इप्सिता हमें चूमकर पीछे हटी, तब तक तो अवंतिका वहां से जा चुकी थी, तो फिर हमने उन्हें क्यों चूमा? क्या हम इप्सिता की ओर आकर्षित हो रहे हैं या हमें उनसे प्यार है? अभिमन्यु के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, वो इतना बोलते बोलते चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और कपड़े बदलने के लिए वो वॉशरूम में चला गया। अभिमन्यु ने थोड़ी ही देर में कपड़े बदल लिए। वहीं इप्सिता जो अपने कमरे में थी, उसने अपनी ज्वेलरी उतारकर दर्पण के सामने रखी हुई थी। इप्सिता खुद को शीशे में देखते हुए बोली, अभिमन्यु ने मुझे इतने जोश से चूमा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो मुझे पसंद करने लगा है? इप्सिता के मन में ये ख्याल आया। इप्सिता खुद को शीशे में देख रही थी, तभी वो अपने बिस्तर पर आकर बैठी और इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, हमें इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इप्सिता इतना सोचकर अपनी सैंडल उतारने लगी। जब उसने सैंडल खोली तो उसे अभिमन्यु याद आया। जब वो पार्टी में जा रही थी तो किस तरह से अभिमन्यु ने इतने प्यार से उसे सैंडल पहनाई थी, वो बात याद करके इप्सिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अभिमन्यु को सोचकर शर्माने लगी। वैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु को सोचते हुए ही अपने मन में कहा, वैसे हम अभिमन्यु को पहले जितना रूखा और घमंडी समझते थे, असल में वो वैसा नहीं है। हाँ, जरूर वो खुद को थोड़ा सख्त दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो बहुत कोमल हृदय वाला है, ये बात हमें आज पता चली। इप्सिता इतना बोलकर अपनी हील्स उतारकर शीशे के सामने खड़ी हुई और उसने सामने लगे हुए आईने में अपना चेहरा ध्यान से देखा तो उसके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे और साथ ही उसके होंठों से लिपस्टिक भी फैल गई थी, और खुद को ऐसे देखकर उसे अनजाने में फिर से अपनी और अभिमन्यु के चुंबन की याद आ गई, और उसके बाल और लिपस्टिक खराब होने की वजह भी अभिमन्यु का ही वो चुंबन था, और वो सभी याद करके इप्सिता ने धीरे से अपनी उंगलियों से अपने होंठों को छुआ। ऐसा करते हुए उसे जैसे ही एहसास हुआ, उसने खुद को डांटते हुए कहा, ये क्या कर रही हूँ मैं, पागल तो नहीं होगी कहीं, पहले कपड़े बदल लेती हूँ। इतना बोलकर उसने अपने गाउन के पीछे अपना हाथ किया, फिर वो गाउन को उतारने के लिए बैक चेन खोलने की कोशिश करने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इप्सिता से चेन खुल ही नहीं रही थी। इप्सिता ने चेन को कसकर पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये चेन इतना फंस क्यों रही है? जब हमने इसे पहना था तब तो बिल्कुल ठीक थी, अब ये खुलने में इतने नखरे क्यों दिखा रही है? इप्सिता के बाल चेन में फंस रहे थे। तभी इप्सिता ने अपना क्लच उठाया और अपने बालों को फोल्ड करते हुए क्लच लगाकर दोबारा से चेन खोलने की कोशिश करते हुए कहा, पहले तो हमें लग रहा था कि शायद हमारे बालों की वजह से ये चेन नहीं खुल रही है, लेकिन ये चेन तो अभी भी अटकी हुई है। अब हम क्या करें? इसे कैसे खोलेंगे हम? इप्सिता ये सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने हाथ को पीछे की ओर मोड़ा और थोड़ी ताकत लगाकर वो चेन को खोलने की कोशिश करने लगी। इप्सिता चेन खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लग रहा था कि चेन और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। इप्सिता ने थक कर अपने हाथ नीचे करते हुए कहा, मेरा तो हाथ दर्द करने लगा, अब हम चेन कैसे खोलेंगे? और इस भारी गाउन में तो हम ऐसे सो भी नहीं सकते, क्या करें? शांता काकी को बुला लूं क्या? इप्सिता इतना बोलकर घड़ी की ओर देखने लगी। रात के 12:30 बज रहे थे। उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, अभी अगर हम शांता काकी के पास इतनी रात में जाएंगे तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। वो बेचारी पहले ही सारा समय इतना काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो अकेले ही पूरे इतने बड़े विला को संभालती हैं, वो पहले ही इतनी ज्यादा थक गई होंगी, अब अगर हम उन्हें इस समय जाकर परेशान करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इप्सिता इतना बोलकर उठकर खड़ी हुई और उसने ऐसे बगल में खड़े होकर दर्पण की ओर देखा। वो ना तो दर्पण की ओर पूरी पीठ करके खड़ी थी और ना ही उसने पूरा चेहरा दर्पण की ओर घुमाया था, वो बगल होकर खड़ी थी ताकि उसे दर्पण में अपना हाथ भी दिखे और गाउन में लगी हुई चेन भी। इप्सिता उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, ये चेन तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है।
वहीं अभिमन्यु, जो अपने कपड़े बदल चुका था, वो अपने कमरे से बाहर निकला और उसने कहा, इतनी देर हो गई है, अब तक तो इप्सिता ने भी कपड़े बदल लिए होंगे। एक काम करता हूँ, अभी जाकर उन्हें माफ़ी मांग देता हूँ। अगर उन्हें बुरा लगा होगा तो शायद माफ़ी सुनकर वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे, क्योंकि हमने बिना पूछे उन्हें इस तरह इतने जोश से चूम लिया। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, कहीं वो हमें ऐसा वैसा आदमी ना समझने लगे। वो चुंबन तो वैसे भी हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया था, हम अगर उन्हें समझाएंगे तो वो हमारी बात ज़रूर समझ जाएंगी। इप्सिता बहुत समझदार हैं। अभिमन्यु इतना बोलकर सीधे अपने कमरे से बाहर निकला और वो इप्सिता के कमरे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि इप्सिता का कमरा खुला हुआ था। इप्सिता को आवाज़ लगाते हुए अभिमन्यु ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, इप्सिता, वो... अभिमन्यु ने धीमी आवाज़ में इप्सिता का नाम लिया, लेकिन जब उसने देखा कि इप्सिता अपनी ड्रेस को खोलने में संघर्ष कर रही है और वो अपने आप में ही उलझी हुई है, तो अभिमन्यु वहीं दरवाजे के पास ही रुक गया। उसने वहीं पर रुकते हुए कहा, ओ शिट, हमें अभी नहीं आना चाहिए था, इप्सिता ने तो अभी कपड़े बदले ही नहीं हैं। अभिमन्यु मन में इतना बोलकर वापस जाने ही वाला था कि तभी इप्सिता ने चिढ़कर थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, कहाँ फंस गए हम भी, और ये चेन भी इतने नखरे कर रही है, प्लीज़ खुल जाओ, वरना हम तो इतने भारी गाउन को पहनकर सो भी नहीं पाएंगे, कैसे खोले हम इसे? इप्सिता थक गई थी, उसने अपना सिर पकड़ा और अपने बालों को ठीक से कसकर बांधने लगी। अभिमन्यु इप्सिता को इस तरह चिढ़ते देख रहा था और उसने सोचा कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन इस बारे में वो कैसे बोले, इसलिए वो चुपचाप धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ कमरे के अंदर आया और उसने इप्सिता की पीठ की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसकी चेन को धीरे से पकड़कर अभिमन्यु ने खोल दिया। अभिमन्यु ने जैसे ही चेन खोली, उसे इप्सिता की पीठ साफ नजर आने लगी और वो एकदम ही उसकी ओर देखता रह गया। और इप्सिता की पीठ एकदम परफेक्ट शेप में थी और गाउन की चेन खुलने की वजह से वो डायरेक्ट नजर आ रही थी। वो देखकर अभिमन्यु ने अपने गले में फंसा हुआ थूक निकाला और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने इप्सिता की पीठ पर स्पर्श किया। इप्सिता को अपने पीठ पर किसी का हाथ स्पर्श हुआ तो वो झट से पीछे मुड़ी। उसने जब अभिमन्यु को अपने सामने देखा तो वो एकदम से हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी कुछ कदम पीछे हटने लगी, लेकिन उसका गाउन उसके पैर में अटक गया। इप्सिता गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से उसकी पीठ के पीछे अपना हाथ लगाया और उसे संभालते हुए बोला, संभल कर, हम हैं और हम वो बस। इप्सिता अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, अभिमन्यु, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? इप्सिता अभिमन्यु की कमर पर उसका हाथ महसूस करके थोड़ी सी घबरा गई। वो जल्दी से खड़ी हुई और उसने अपने गाउन को पकड़ा और पीछे की ओर पलटने लगी। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे पकड़ते हुए कहा, वो असल में इप्सिता, हम यहाँ आए और तभी हमने देखा कि आपको शायद अपनी ड्रेस को खोलने में परेशानी हो रही थी, तो हमने